जी अब फरमाइए।
जी सर, सवाल है कि ये गलत देखना और बुरा देखना, इसकी मतलब ये समझना है सर, ये एक तरफ गलत देखना और बुरा
देखना। हमारे जी कुरान की तालीमात के मुताबिक हमने किसी चीज को बुरा नहीं देखना। रूहानियत की तालीमात ये हैं कि किसी चीज़ को बुरा नहीं देखना, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ तख्लीक की है। इसका रीज़न कि अल्लाह ने हर चीज़ को तख्लीक की है, मैं उसकी तख्लीक की हुई किसी चीज़ को बुरा या अच्छा कहने वाला कौन होता
हूँ?
और करें, जब हम किसी चीज़ को बुरा कहते हैं तो असल में हम डिनाउंस कर रहे हैं अल्लाह के उसको क्रिएट करने को, यानी कि अल्लाह ने उसको तख्लीक किया और हम बुरा कह रहे हैं। अरे भाई, हमारी मजाल तो देखो, गौर करें जरा, कितना बड़ा फर्क है। अब यहाँ पे जो इश्तबा हुआ सबको होता है जब हम ये जुमला सुनते हैं कि भाई अगर एक काम मेरी अकल, मेरी रसाई, मेरी फहम या मेरे मामलात से मुताबिकत नहीं रखता तो उसको क्या कहूँ, मैं उससे कैसे बचूँ। तो हम ने इसकी तफरीक करने के लिए लफ्ज गलत इस्तेमाल किया कि जो चीज गलत है, आपके सिस्टम के मुताबिक नहीं है, वो उससे हटी हुई है। मसलन अब आपका बेटा आता है घर में, वो जूते उतारता है और वो ऐसे फैला के फेंक देता है, मोजे कहीं फेंक देता है। अब इसको आप बुरा कहेंगे या गलत कहेंगे? आप इसकी बुनियाद पे उसको बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि उसकी इस्लाह फरमाएंगे कि भाई ये गलत है, बेटा ये गलत है, इस तरह करना आपके बिखरे हुए जहन की अलामत है। आप अगर अपनी चीजें समेट के रखेंगे तो आपको आपका जहन भी सिमटा रहेगा। गौर करें, क्लियर हो गई? अब देखे ना, एक बंदा मुझसे एक बात कहता है, अब उसने जो कहना था उसने कह दिया, अब मैंने हुक्म लगाया कि ये गलत बात कह रहा है, ठीक है, मैंने हुक्म लगाया, उसने तो अपनी तरफ से सही कहा, लेकिन मेरे मुताबिक वो बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है। अब मैं उस बंदे को इस बात की बिना पे बुरा समझने लगूं तो ये शतनत हुई। मैंने उसकी बात को समझा कि ये गलत बोल रहा है, तो गलती का मेरे पास कोई हल नहीं है। फर्ज करें, एक ये सूरत है कि मेरे पास हल है, मैं इस्लाह कर दूं उसकी, यानी फर्ज करें कि मेरी पोजीशन बड़ा होने के नाते ऐसी है कि मैं उसकी इस्लाह करने को उसको आगे से कह दूं, नहीं बेटे ऐसे बोल नहीं बोलते। लेकिन फर्ज करें कि वो मेरा हम उम्र है या मुझसे बड़ा है, अब उसने एक बात कही जो मुझे नागवार गुजरी, मेरे नजदीक वो गलत है, तो मैं क्या करूंगा? खामोश हो जाऊंगा, उसको दरगुजर कर दूंगा, उसका असर नहीं लूंगा और दिल में ये जान लूंगा कि ये गलत है, ठीक है। उसको, उस बंदे को बुरा समझने के बजाय मैंने सिर्फ यही देखा कि भाई उसने ये गलत बात की, बात खत्म। ये है फकीराना अप्रोच। फकीरी में आपको चीजों को बुरा नहीं देखना, अगर गलत कह रहा है तो या तो गलती की सलाह कर दो या चुप करके उसके साथ गुजारा कर लो, लेकिन बंदे को बुरा देखना इसकी इजाजत कुरान नहीं देता। ठीक हो गया? अब ये जो हम गीबत करते हैं, जब हम कहीं बैठते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ जो भी गैर हाजिर हो उसके खिलाफ अक्सर लोग नेगेटिव बात कहते हैं, उसकी कमजोरी या उसकी शॉर्ट कमिंग या उसकी वीकनेस, उसका तस्करा करके उसको बुरा कहते हैं। इसको बैक बाइटिंग कहा है और अल्लाह ने इसकी मिसाल क्या दी है कि ये ऐसे है जैसे आप मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। गौर करें, बुरा समझना, याद है मैंने अर्ज किया था कि देखें, एक चीज है रहमानियत और एक चीज है शैतनत। रहमानियत क्या है? मोहब्बत। रहमानियत क्या है? तामीज। रहमानियत क्या है? इज्तमाइयत। यानी अगर आपके अफकार में मोहब्बत है, तामीर है और इज्तमाइयत है, यानी सबके लिए है, सबका भला सबकी खैर, ठीक है, तो इसके बरक्स, मोहब्बत के बरक्स क्या जज्बा है, वो है नफरत। अब नफरत की शक्लें हैं, नफरत असल में बेस करती है बुरा लगने पे, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। मोहब्बत असल में लाइकिंग को कहते हैं और डिसलाइकिंग को बुरा कहना कहते हैं। नफरत इसी पे बनती है, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये सारी फिर आगे इसकी जड़ें या इसकी तनावर दरख्त वाली शक्लें हैं। ठीक हो गया ना, अब वाजे हो गया कि बुराई और गलती में क्या फर्क है। जी
अच्छा, ये जो आप मतलब आप अपनी तरफ से आपकी नियत में होती है कि आप रूहानियत के हवाले से यानी अल्लाह के डूज एंड डोंट्स में सोच के समझ के आप जो कोई काम करते हो, अल्लाह वाला उसको यानी उससे अग्री नहीं है या फिर वो उसको मतलब
जी हाँ, तो इसीलिए कुरान में ये दो आयतें मैंने अर्ज की थी, व तौसिरून अलहयातुद्दुनिया व असरल हयातुद्दुनिया। देखे ना, आप अपने जहन के मुताबिक चलेंगे, आपने अल्लाह के जहन के मुताबिक चलने की कोशिश करनी है, अपने जहन को अल्लाह के ताबे करके चलना है। अब दूसरे को नहीं पसंद तो वो तो हजूर अलैहिस्सलाम को भी बहुत सारे लोगों ने पसंद नहीं किया, गौर करें उनके खिलाफ जंगे होना क्या बात थी। लेकिन ये कि हमने उसका असर नहीं लेना उनके, देखे ना, पहले तो आपने अपने जहन में वाजे कर लिया कि मैं गलत हूं, तो आपने सॉरी कह दिया। अगर आपसे गलती हो जाए तो आप सॉरी बोल दें, लेकिन अगर वो अगला समझ रहा है कि आप बुरे हैं तो आप हट जाएं, उसे कहें भाई हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप तोलें कि भाई वाकई कहीं ये मुझ में बुराई है तो मैं उसकी इस्लाह करूं, उसका आप शुक्रगुजार हो जाएं कि उसने आपको मतवज्जो कर दिया। लेकिन अगर वो गलत है, यानी कि वो आपको बुरा कहने में गलती कर रहा है, गलती कर रहा है किस चीज़ की, आपको बुरा कह रहा है, क्या करेंगे
जी?
आप उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, ठीक है, क्या करेंगे? तो से रूनल हयात दुनिया, या तो उसका असर लेंगे और जहन्नम रसीद होंगे, अपना खून जलाएंगे ना, आप कहें भाड़ में जा बजाय मैं जहन्नम में जाऊं तू जा वहां क्लियर हो गया? ये एटीट्यूड, एटीट्यूड, ये सारा एटीट्यूड को डील करता है। जी और क्या?
जी एक और सवाल है, ये जो फरमाया जा रहा है कि सास औरत का भयानक रूप है, ये
अब्बा ने लफ्ज कहा था जी हाँ, ये हजूर मुर्शिदे करीम ने कहा था कि औरत के जितने भी रूप हैं, देखे ना, बेटी है, बहन है, फिर वो बीवी बनती है, फिर वो माँ बनती है, फिर वो दादी बनती है, नानी बनती है, वगैरह वगैरह, जितने भी कहीं चाची है, कहीं ताई है, कहीं मामी है, कहीं ना मतलब बहू है, वगैरह वगैरह, जितने भी रिश्ते हैं उनमें एक रिश्ता उसका सास का रूप है। अब सास का रूप जो है वो औरत का जितने भी रूप है उनमें सबसे बुरा रूप है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे एहसास मलकियत आ जाता है, वो एक तरफ कॉम्प्लेक्स है ना कि जी मेरा बेटा इसने छीन लिया, तो अब उसकी अप्रोच नेगेटिव हो जाती है, यहां से वो बेटे को अपनी मलकियत समझती है और बहू को अपना दुश्मन ठीक हो गया, यहां से उसका सारा रूप गड़बड़ हो गया, ठीक हो गया,
इसलिए
हाँ जी, क्योंकि वो फिर क्या करती हैं, खिलाफ बातें करते हैं एक दूसरे के, उसको बहू की हर बात ही बुरी लग रही होती है और बुरा लगना शैतनत है।
जी
जी, क्लियर हो गई बात? इसका बड़ा आसान तरीका यही है इस रूप को भयानक से बेहतर बनाने का, कि आप उसको बेटी समझें, आप उसको देखो ना, आपकी बेटी भी तो मस्तियां करती है ना, उसने कर ली तो क्या हुआ?
बिल्कुल
है,
बिल्कुल
सर। बस उसे भी अगर आप बेटी की का मुकाम देंगे तो वो लाजिमन आपको माँ का मुकाम देने की पाबंद हो जाएगी, कानून है। अगर आप एक को बच्चा समझते हैं तो दूसरा बाप तो नहीं बन सकता। ठीक हो गया ना?
ये चीज बहुत जरूरी
है
सर।
हाँ, ये चीज बहुत चले। बहरहाल आपने बहुत अच्छा किया कि इस मौजू पे बात फरमाई और मेरे जो जेन में थी वो मैंने अर्ज कर दी।
मैंने करम किया, थैंक यू सो मच सर
जी। और कोई सवाल जी?
सर मेरा एक सवाल है, मैं करूं
जी इरशाद
जी। सर मेरा सवाल है ये बड़ी खबर के बारे में, सूरह नबा में जो आपने बताया ये बड़ी खबर जो है इसके अंदर तख्लीकी निजाम के बारे में है।
जी हाँ,
तो दुनिया में जितनी भी तख्लीक हो रही है सब
बिल्कुल
वो सब एक बड़ी खबर है
जी। यानी देखें दुनिया क्या क्यों बनी, कैसे बनी और इसका अंजाम क्या होगा, ये है बड़ी खबर। देखें ना, सबसे बड़ी बात जिस पे हम लोग आपस में उलझे हुए हैं या अपने जेनों में हम क्लियर नहीं हैं या हमारे जेनों में जो खिचड़ियां पकती हैं वो ये कि क्यों बनी दुनिया, कैसे बनी दुनिया, इसका अंजाम क्या होगा, ये तीन सवाल है। तो ये सारी की सारी बातें उस सूरत में अल्लाह ने बयान कर दी कि यूं बनी, तुम्हें यूं बनाया और ये मकसद है इस दुनिया को बनाने का, बात खत्म। जहन को मकसद की तरफ ले गए ना कि असल खबर तो ये है कि कैसे बनाया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आप सबके खुशखबरी के तौर पे सुना देता हूँ कि आसिम मेरा बेटा परसों चौथ गया था अब्बा से मिलने, तो हजूर मुर्शिद करीम ने जुमला जो इरशाद फरमाया उससे पूछा आपके अबू कैसे हैं, उसने कहा जी कि वो आपको बहुत सलाम कह रहे थे और आपसे दुआ गो मतलब दुआओं की दरख्वास्त कर रहे थे, तो उस पे वो हजूर मुर्शिद करीम ने फरमाया अरे सुना है वो तो बड़े लेक्चर वेक्चर दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर बाकायदा उससे डिटेल्स चाहिए कि वो कैसे करते हैं क्या करते हैं, उसने बताया तकरीबन इतने लोग होते हैं एक एक सेशन में, तो उन्होंने कहा बिठाते कहाँ हैं, उन्होंने कहा जी वो अपने अपने घरों में बैठ के फ़ोन पे बात करते हैं, वो एक ही ग्रुप बन जाता है उसमें वो। तो हजूर मुर्शिद करीम को ये सुन के बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत तारीफ की और फिर पूछा कि क्या वो ये मुस्तकिल बुनियादों पे कर रहे हैं या सिर्फ ऐसे वक्ती तौर पे शुगल मेला लगाया हुआ है। ये शुगल मेले का लफ्ज मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना फरमाया कि क्या वो ये मुस्तकिल बुनियादों पे कर रहे हैं, तो उसने कहा जी जब तक चलता है वो चलाते हैं, बाकी मुस्तकिल क्या होता है। उसने तो जी हाँ कह दिया। हजूर मुर्शिद करीम ने इस बात को बहुत सराहा। ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ी, मेरे लिए बड़ी सआदत है कि हजूर मुर्शिद करीम ने हमारी इस काविश को इस तरह पसंद फरमाया। सबसे पहले तो आप माशाल्लाह सब खुद पसंद फरमा रहे हैं, तभी तो आप यहाँ पे हाजिर हैं। क्यों जी, अगर बुरा लगेगा तो आप क्यों रुकेंगे? जी नहीं, ये सब आपकी मोहब्बत है, सब आपकी तलब है। देखे ना, अगर आप जस्तुजू ना करते, अब ये शाजिया ने जितना मतलब है इसरार करके ये ग्रुप बनाया और जिस तरह से उसने अपने बच्चों को, अपनी बहन के बहन को, भाभी को, बच्चों को, सबको शामिल किया, तो ये सब किसका तलब है? ये आप लोगों की तलब है, उसका इंतजाम मुर्शिद करीम ने कर दिया कि मेरे जरिए आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच रहे हैं। ठीक है ना जी? तो मैं तो इसका क्रेडिट शाजिया को देता हूँ कि जिन्होंने ये ग्रुप बनाया। देखे ना, मैंने एक बात की, आप सब उसकी तस्दीक कर रहे हैं, हाँ या नहीं? तस्दीक करने पे मजबूर है क्योंकि वाकई ऐसा ही तो है। जी चलें, लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि ये खुशखबरी मुझसे हजम नहीं हो रही थी। मैंने कहा कि मैं सबको बताऊं, क्योंकि मैंने तो नहीं बताया था अब्बा को, और मौका नहीं मिला, बात वहाँ पे मैं गया नहीं, तो बहरहाल फ़ोन पे बात होती थी तो ये बातें करने की मैं नहीं समझता था, तो इसलिए तो वो आसिम के ज़रिए उन्होंने मैसेज भेज दिया कि शाबाश यू आर डूइंग वेल। इसमें आपको एक और ख़बर भी सुना छोड़ूं ताकि सनद रहे। जब न्याज भाई को अब्बा ने खलीफा मजाज मुकरर किया तो वो जब पिशावर आए तो आसिम मेरे बेटे से जब मिले, वो गया मिलने उनसे, तो उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़ के ऐसे प्यार से हिला के कहने लगे, अपने अब्बू को कहना कि वो जो कर रहे हैं उस पर डटे रहें, करते रहें, किसी की परवाह ना करें। मैंने कहा जी देखे ये सब अल्लाह के इनामात हैं। अल्लाह नहीं किसी को, अल्लाह सबको नवाजता है जी, अल्लाह नहीं छोड़ता। अल्लाह अब्बा ने फरमाया था अल्लाह मियाँ ना अपने जिम्मे ना अपने दोस्तों के जिम्मे कोई कर्ज नहीं छोड़ते, ना अच्छा ना बुरा, ये हजूर मुर्शिद करीम का इरशाद है। तो जब आप अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं तो फिर वो अपने जिम्मे जब कर्ज नहीं छोड़ता तो अपने बंदो अपने दोस्त के जिम्मे भी नहीं छोड़ता, ना अच्छा ना बुरा। किसी ने उसके साथ अच्छा किया अल्लाह उसके साथ अच्छा करता है, किसी ने उसके साथ बुरा किया तो माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। वो फकीर जो है वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं, वो कहता है अल्लाह जाने और वो जाने, ठीक है ना जी।
पर वो माफ भी कर देता है फकीर
अल्लाह पे छोड़ देता है, माफी जितना वो उतना फिफरा उसका कहाँ होता है बेचारे का। ऐडा वो अल्लाह मियाँ बढ़िया बन तो नहीं बन जाता कि वो माफ करता फिर है। अब्बा ने फरमाया था कि हजूर अलैहिस्सलाम का जहन इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि उनके हाँ मुआफी का खाना बहुत बड़ा है। गौर करें मुआफी का, देखें अल्लाह के लिए मुआफी का, अल्लाह के एंगल से मुआफी का बिल्कुल और मतलब है, लेकिन मेरे और आपके यानी मखलूक होने के नाते मुआफ़ी का क्या मतलब है कि हम उसको इग्नोर कर दें और हमने क्या करना है, उसको इग्नोर कर दें उसका असर ना लें बस।
सही कह
रहे सर, देखे ना
बड़ा अच्छा
जी, देखे मुआफ़ी का मतलब है मेरे किए हुए करतूतों पे लामिया वो क्या कहते हैं इरेजर फेर दें, वो इंक रिमूवर लगा दें वहां पे, ये मुआफी है क्यों जी। और ये काम तो अल्लाह ही कर सकता है, मैं तो सिर्फ ये कर सकता हूँ कि किसी ने बुरा कहा या बुरा सोचा या बुरा किया तो बस तवज्जो हटा ली, बात खत्म, ठीक हो गया। आज ये भी कानून वाज़े हो गया, क्योंकि मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता उसके किए को, ठीक है ना
जी। अच्छा इसी सूरे के हवाले से सर मेरे सवाल चल रहा था तकलीफी निज़ाम के बारे में कि तकलीफी निज़ाम सबसे बड़ी खबर है।
जाहिर है
अब सर अब जो दुनिया में जो चीजें तकलीफ कर रहा है इंसान वो क्या चीज है,
वो अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का इस्तेमाल है। अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी, आपने उनको इस्तेमाल किया। अच्छा मज़े की बात है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते। अब देखे ना ये जो जिस डिवाइस पे मैं और आप बात कर रहे हैं, बल्कि हम सब बात कर रहे हैं, बैक वक्त बात कर रहे हैं और बड़े मज़े से अपने अपने घर में बैठे हुए बात कर रहे हैं, अपने अपने कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं। अब ये डिवाइस जिसने इजाद की, जिसने तखलीक की, और करें तो ये सारी इंस्पायरेशन उसको कहाँ से मिली? भाई अल्लाह ने ही दी ना भाई, उसने गौरव फिक्र किया, गौरव फिक्र के नतीजे में उसके अंदर ये इंस्पायरेशन आई, ठीक है, उसके जहन ने उसको कबूल, न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसको अमली जामा पहनाया। जब उसको अमली जामा पहनाया तो अब एक सूरत ये थी कि वो मफादे आमा यानी अवाम के इस्तेमाल में आ जाती, लोग उससे बेनिफिट पाते, ठीक है। उसने इसमें अपनी अकल का इस्तेमाल किया और इसको पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया, अब पैसा चूंकि साथ नहीं जाना, उसने अपना अजर पैसे की सूरत में ले लिया, वो उसने साथ नहीं जाना तो कौन खसारे में हुआ? उसको पैसे ने अट्रैक्ट कर लिया, उसका सारा गौर व फिक्र, बजाय इसके कि वो इस तरफ मजीद गौर करता कि मेरे अंदर ये सलाहियत कहाँ से आ गई, मेरे अंदर ये काबिलियत कहाँ से आ गई, मुझे ये अता किसने की। अब देखे ना फकीरी में हजूर मुर्शिद करीम का इरशाद है कि अल्लाह की बख्शी हुई सलाहियतों को आप अपनी सलाहियतें ना समझें, उनका भरपूर इस्तेमाल करें और ये समझें कि ये भीख में मिली हुई सलाहियतें, और करें, ये है तर्ज फिक्र। इस्तेमाल करना जरूरी है, हम क्या करते हैं, ओ जी बस नहीं ये तो वो पैसा कमा रहे, हम पैसा भी नहीं कमाते, चले छोड़ दें। अरे भाई आपको इजाद करने से किसने मना किए? भाई आपके अंदर सलाहियत है, आप जरूर इजाद करें, लेकिन हायर पेडेस्टल पे जाकर आप इसलिए इजाद करें कि जी मुझे पैसे मिले इसके, या इसलिए इस्तेमाल करें कि भाई अल्लाह की मखलूक का फायदा हो जाए, और करें, फिर दोनों जरा सा फर्क है। पैसे तो आपको हर दो सूरतों में मिलने हैं, पैसे तो आपको हर दो सूरतों में मिलने हैं, आप भले कोई तखलीक करें या ना करें, मिलते हैं कि नहीं मिलते, सबको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। आप गौर करें, आपने ईद का दिन, आप ईद का दिन किसी गरीब से गरीब बच्चे की जेब में हाथ डाल के देखें, पैसे होंगे उसमें, क्या मतलब हुआ? तो ये पैसा का निजाम जो है इसको अहमियत देना गलत है, इसको जरूरत की चीज समझकर बरतना जरूरी है, बस आप इसे बरतें, लेकिन क्या कि दूसरे का हक गजब करके बरत रहे हैं, क्यों कि लालच बढ़ गया पैसे का, है? ये सारी बातें इसमें अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमा रहे हैं, हमने कभी पहले गौर नहीं किया इसलिए कि हम सिर्फ अरबी पढ़ते थे, कभी उसके मफाहीम पे तवज्जो नहीं गई थी हमारी, अब आपकी तवज्जो गई तो देखें कितना कीमती सवाल निकला, ठीक है ना। जब गौर करेंगे तो गौर व फिक्र क्या है, सवाल आना, जहन में सवाल आना जो है ये गौर व फिक्र है। ये हम सब क्या कर रहे हैं, आप सवाल करते हैं, मेरे जहन की मशीन काम करती है, अल्लाह उसमें डाल देता है, जो बातें डालता है मैं पेश कर देता हूं। अब्बा ने भी यही फरमाया कि भी अल्लाह ही जहन में ख्याल डालता है। अब ये जो ख्याल आना, अब शाजिया को ख्याल आना कि भी सर से सवाल जवाब का सेशन होना चाहिए, तो ये अल्लाह की तरफ से था, उसने रिसीव किया, हमने सर झुका दिया, हमने कहा भी अल्लाह की तरफ से ख्याल है, बड़ी अच्छी बात है, गौर करें। इसी तरह सबको चाहिए कि जो अल्लाह की तरफ से ख्याल आ रहा है उसको असेस करें कि ये अल्लाह का है, ये मेरे नफ्स का है, या मेरे माहौल से आई हुई इत्तला है, या हजरत शैतान की फूंक मार रहा है, ठीक है कि मारी हुई फूंक है, बस इसको आइडेंटिफाई करते जाएं और अपना या बचते जाएं या खेलते जाएं। ठीक हो गया?
थैंक यू जी, थैंक यू सर, मेरा सवाल हो गया, कोई और अगर कुछ पूछना चाहे तो।
जी
वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम
सर, मेरा क्वेश्चन सूरह नबा की आयत 22 से है, लितौगीना माबा, जिसमें से तबा और सरकशी के बारे में बताया है। तो सर बेसिकली तबा क्या, तबा से क्या मुराद है?
फर्ज करें कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, सड़क पे साइड पे येलो लाइन लगी होती है
जी।
अगर आप गाड़ी येलो लाइन से नीचे उतार के चलाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी को नुकसान होगा कि नहीं? या वहाँ जो पेडेस्ट्रियन जा रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि येलो इज इंडिकेटर, ठीक है। तो जब आप येलो लाइन क्रॉस करते हैं तो ये आप तगा कर रहे हैं, तगा किए, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत मिसाल है या तस्वीर बन जाती है कि गॉड हैज सजेस्टेड अ पाथ, गॉड हैज सजेस्टेड अ वे। ठीक हो गया? जब अल्लाह रब्बे करीम ने एक रास्ता तय कर दिया या बता दिया, उस रास्ते से हट के चलना तगा है। ले ताहीना माबा, माबा मैंने वो रहेंगे, वो फिर वहीं रहेंगे, इसकी मिसाल है। अब एक पैसेज है, उसके दोनों तरफ दलदल है, इन्ना कानत जहन्नमा मिरसादा, इससे पहले है या बाद में है, ठीक है ना, कि जहन्नम उनकी ताक में है, यानी कि ये रास्ते के दोनों तरफ दलदल की तरफ इंडिकेशन है कि अगर आप ये येलो लाइन क्रॉस करके दलदल में उतरेंगे तो आपने तगा किया, अब दलदल में आपके पैर फंस गए, क्योंकि दलदल की साख्त ऐसी है कि वो जकड़ लेती है, तो इसलिए आप वहीं फंसे रहेंगे, माँ बा उसी में रहेंगे, जो तगा करेंगे वो उसमें रहेंगे। ठीक हो गया? यानी जहन्नम जो है अल्लाह के बताए हुए रास्ते के दोनों तरफ का इलाका जो है वो सब जहन्नम है, यानी अगर आप अल्लाह के कहे के खिलाफ चलेंगे तो आप तगा कर रहे हैं और नतीजा वो दलदल में फंस रहे हैं, जहन्नम में फंस रहे हैं। ठीक हो गया? मोस्ट वेलकम
सर, मेरा अभी सवाल है, सूरह नबा का आयत नंबर 10 वजानल लैला लिबासा, उसमें आपने कहा कि रात के हवास, ख्वाब के हवास इंसानी रूह के लिबास है, तो आप प्लीज से एक्सप्लेन कर देंगे?
जी जी, लिबास किसे कहते हैं? लिबास का असल काम, असल फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द वेदर, यस या नो? यानी एक तो उसने आपको मौसमी असरात से बचाना है, दूसरे आप जीनत के लिए पहनते हैं, लिबास को डिफाइन करें ना
जी।
यानी के लिबास क्या होता है? कवरिंग होती है, लिबास एक कवरिंग है, एक ओट है, एक क्या कहते हैं आड़ है, एक पर्दा है, ठीक है
जी,
जो आपको बचाता है किस चीज से, या आपको जीनत देता है। अब आप गौर करें, दोबारा पढ़ें ये शायद के अल्फाज, वजानल जालनल लैले लिबासा या जिन सॉरी नहारे लिबास, क्या है लैला लिबास, लिबास। अब रात में क्या होता है, आपकी जो लाशऊर है वो बजाहिर आपका जिस्म सो जाता है, बजाहिर आपका जिस्म सो गया, पर्दा आ गया एक तरह का आपके शऊर के ऊपर, क्या आ गया,
पर्दा,
किस वजह से? रात के हवास की वजह से शऊर पे पर्दा आ गया। रात के हवास की वजह से आपके ऊपर, आपके शऊर के ऊपर एक पर्दा आ गया, शऊरी दुनिया से आप कट गए, हाँ या नहीं?
जी।
बस ये इसका मतलब है।
ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था।
जी इरशाद।
इन्ना जहन्नमा कानत मिर्सादा।
जी
मैं नबा से ही हूँ।
अभी अभी मैंने इसी की जी जी जी।
तो मुझे एक कॉन्सेप्ट है कि आपने जैसे कहा जहन्नम पछतावा है, तो क्योंकि हमारे लिए कॉन्सेप्ट डिफरेंट है जहन्नम का, जो हमें बताया जाता है, जो हमने सुना है हमेशा से।
जी जी।
तो आप थोड़ा सा ये डिफाइन कर देंगे।
जी जी। देखें पछतावा किसे कहते हैं, कभी आप पछताएं किसी बात पे?
जी।
क्या होता है? अंदर से बंदा जल रहा होता है कि ये मैंने क्यों किया।
जी।
इसको जलन ही कहेंगे ना।
जी।
पछतावा एक आग ही की तरह तो जला रहा है, हाँ या नहीं? जब हम देखे ना, जब आपने तगा किया, यानी आप रास्ते से वो येलो लाइन क्रॉस करके दलदल में उतर गए, ईमानदारी से बताएं आप कौन सी कैफियत में होंगे, पछतावे की या के खुशी की?
पछतावे
कि यार मैं काश ना ही छोड़ता। क्या कहा? या लैतनी कुंतो तुराबा, ए काश। क्या कहा? या लैतनी, यानी पछतावे का इजहार। अल्लाह खुद कह रहा है, मैं अपने पास से नहीं कुछ मतलब बता रहा, लेकिन चूंकि आपने हमेशा अधूरी बात सुनी, मतलब कहने वाले ने जो बात कही उसने अधूरी कही, आपने उसका भी आधे को आधा समझा, उस अधूरी का भी अधूरा समझा, फिर जो समझा उस पर गौर व फिक्र नहीं किया, नतीजा जाहिर है कि वो जब कोई गहरी बात आपको अर्ज की गई, आपके सामने आई, तो आपका जहन दोनों को टैली नहीं कर पा रहा। तो मैंने आपको मिसाल से वजाहत अर्ज कर दी कि पछतावा कहते किसे हैं। अंदर एक चीज जल रहा है ना, बंदा जल रहा है, काश ये मैं ना करता। फर्ज करें मैं चोरी कर रहा हूं और पकड़ा गया, ईमानदारी से बताएं अब मेरी क्या हैसियत रही, मेरी क्या औकात रही आपकी नजर में, और मेरे अंदर क्या होगा आपकी नजरों से गिरने के बाद, मेरे अंदर क्या होगा? काश ये मैं ना करता, या लेता नहीं कुन तो तुराबा, काश मैं तो मट्टी ही रहता। ये आपका फरियाद आई है, तो किस चीज की फरियाद है? पछतावे की या नहीं?
पछतावे की।
तो जहन्नम भी एक कैफियत है, जन्नत भी एक कैफियत है। नुजला, ये कौन सी सूरत हमने पढ़ी थी? मेरा ख्याल है सूरह कहफ में था ना।
कहफ में सर।
जी। क्या था? कि ये जहन्नम भी नुजला, यानी के नजूल करती है, नाजल की जाती है। अब जहन्नम नाजल की जाती है क्या मतलब हुआ? मेरे अंदर है, वो एक कैफियत है, हमने उसका एक सीन बनाया हुआ है, एक मुकाम का तायुन करके उसको एक सीन बनाकर उसे डर रहे हैं। हालांकि एक चीज से वार्न किया जा रहा है कि आप उसे बचें, यानी देखो ना, अगर मैं चोरी करने से पहले सोच लूं कि यार अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे पछताना पड़ेगा, मैं इस पछतावे की आग से डरता हूं, तो मैं नहीं करता। तो बताइए अब हम जहन्नम में डाले जाएंगे, वो भाई इसमें गे वे कुछ नहीं है, ये बस यहीं पे है। आपने अगर पछताया, पछतावा हुआ, तो आप जहन्नम में। अब अगर आप कहने जी मैं तो ढीठ बन गया, तो ये बचाव का तरीका तो नहीं है, क्योंकि जमीर तो अंदर से कचोके लगा रहा है ना।
जी।
ये सोचना कि जी अगर बंदा जैसे हमारे यहाँ मेरे जैसा टेढ़ा सोचने वाला बंदा जो है, तनकीदी अंदाजे नजर रखने वाला, या वो कहता है जी अगर कोई बंदा ना महसूस करे है कि पकड़ा गया तो क्या हुआ, ये तो होता है काम ऐसे कामों में, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में मैं यूं सोच के तो कहूं कि नहीं मैं क्यों पछताऊं। नहीं 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 नहीं, यहां पे कहानी ये है कि आपका जमीर है, और ज़मीर जो है वो आपको कचोके लगाता है कि ये तुमने गलत किया, वो एहसास दिलाता है। ये मरने के बाद ये कैफियत वाजे हो जाती है, बस इतना सा फ़र्क है। तो दुनिया में ज़िंदगी में वाजे कर लो, बचत हो जाएगी
जी सर।
बस ठीक हो गया
जी, थैंक यू सो मच सर,
टेक ए गुड केयर। जी जनाब, जी वालेकुम अस्सलाम
सर, मेरा सवाल है कि मैं और अना का फर्क सर, ये
कोई फर्क नहीं है,
मैं और अना,
मैं और अना एक ही। हमारे यहाँ अन्ना कहते हैं वो बेबी सिटर को बेबी सिटर होता है ना, या होती है, जो खातून बच्चों की देखभाल करे उसे अन्ना कहते हैं। तो मैं और अन्ना
सर ये बड़ा कीमती सवाल है, प्लीज बताइए जरा।
मैं अर्ज कर रहा हूँ कोई फर्क नहीं है, मैंने इस कीमती का जवाब उससे ज्यादा कीमती अर्ज किया, क्या कोई फर्क नहीं। जिस चीज को आप मैं कहते हैं यही अना है, यही जात है, इसी को नफ्स कहा गया, इसी को हजूर अलैहिस्सलाम ने नफ्स कहा है, इसी को कुरान ने हबलुल वरीद कहा है। देखे मैंने एक ही चीज के कितने नाम बताए। ताजुद्दीन बाबा औलिया ने इसको अना कहा है, हजूर कलंदर बाबा औलिया ने इसी को अना कहा है, अना की लहरें, अना की लहरें। अना से मुराद है मैं, इकबाल ने इसी को खुद ही कहा है। गौर करें, एक ही चीज के लाशुमार नाम रख दिए, ठीक हो गया। देखे ना ये मेरी बात कौन सुन रहा है, मैं कौन है, आपकी जात, मैं कौन है, आपकी अना, आपकी अना मेरी अना की लहरें वसूल कर रही है। अब लहरें गौर करें, ये मेरी आवाज क्या है, मेरी अना की लहरें हैं, जो कि उसने जिस्म को इस्तेमाल करके निकाली। अब अना जो है वो इस जिस्म की मोहताज बनकर आवाज के जरिए लहरें मुंतकिल करे, या इस जिस्म के बगैर अपने थॉट की लहरों को आप तक पहुंचा दे, ये अना का की दस्तरस में है। उसकी एक मिसाल आपने कलंदर शऊर में पढ़ी कि ताजुद्दीन बाब औलिया पहाड़ पे चढ़ते चले गए और कहा भी यहाँ शेर आएगा, जिसको शेर से डर लगता है वो जाए, बाकी बेशक कहीं इधर उधर होके छुप जाओ, ठीक है। और खुद लंबी लंबी घास पे लंबे होके लेट गए, सो गए, बकायदा सो गए। उनके जहन में शेर का कोई खौफ था? शेर बड़ी अकीदत और एहतराम से कदम ब कदम चलता हुआ उनके पास आता है और उनके पैरों को जबान से चाटता है। उसके बाद क्या होता है, वो उठ जाते हैं, बेदार होते हैं, उसे देख के उसके सर पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, हैं, तुझे देख के अच्छा लगा, अब तू तंदुरुस्त है। गोया उनको उसकी बीमारी का भी पता था, उसका इलाज किया होगा उन्होंने, तभी तो शेर उनको जानता था, तभी तो उनके कदम कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ था उनके सामने। तो ये सब क्या था, उनके दरमियान अना की लहरें काम कर रही थी। हम और आप अना की लहरों को चूंकि बजरिया इस जिस्म इस्तेमाल करते हैं और जिस्म को वलियत दिए हुए हैं, इसलिए हमें अना की समझ नहीं आ पा रही। अब वाजे हो गई बात कि अना जो है वही तो है जो इस जिस्म को चला रही है, वो रूह के जरिए चला रही है। रूह क्या है, रूह वो एनर्जी है जिसे अना काम ले रही है। फिर आगे रूह और अना ने मिलकर एक चीज बनाई है जिसको आप नस्मा कहें या जहन कहें। ये जहन वो प्रोसेसर है जो जिस्म को इस्तेमाल करता है, या मीडियम है जो जिस्म को कंट्रोल करता है। अब ये जिस्मानी तौर पे, अब ये निहार के हवास को इस्तेमाल करने के लिए आपको जिस्म चाहिए, ये نہار کے حواس یعنی دن کے حواس کو استعمال کرنے کے لیے جو چیز درکار ہے وہ جسم اور جسمانی خد و خال اور ان کی حسیات, یعنی حسیات کا جسمانی لیول درکار ہے نہار میں. رات میں کیا ہوتا ہے, لیل میں کیا ہوتا ہے کہ پردہ پڑ جاتا ہے, جسم سو جاتا ہے اور آپ کو وہ حواس کی رفتار بڑھ جاتی ہے, یعنی آپ کی انا کی زینت بڑھ گئی. کیونکہ وہ برتر حواس سے آراستہ ہو کے کھیلتی ہے نا. اب ہم چونکہ شعوری طور پہ اس ریلم سے یا اس عالم سے آشنا نہیں ہیں, کیوں متوجہ نہیں تھے, اب متوجہ ہو گئے تو آپ آشنا ہو رہے ہیں. اب جیسے بچہ ایک ہی دن میں تو پیدا ہوتے ہی تو نہیں اماں یا ابا اور چاچا یہ تو نہیں کرتا, وہ سالوں لگتے ہیں اس کو جا کے, وہ آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ یہ کون ہے. بھائی چار پانچ سال کا ہونے کے بعد اس کو یہ شعور ہوتا ہے کہ یہ میری اماں ہے, یہ میرا ابا ہے, یہ میرا دادا ہے, یہ اس بابے کی عزت کر رہے ہیں میرے اماں ابا, تو یہ بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے. غور کریں, یعنی کافی وقت لگتا ہے, یعنی شعوری حواس کا استعمال کر. تو جب ہم لاشعوری حواس کا استعمال کرنا سیکھیں گے تو کیا وقت نہیں لگے گا. ہم کہتے ہیں بس پہلے ہی دن چار دن مراقبہ کیا تو کچھ ہو جائے, کیوں ہو جائے بھائی, ایک شعوری نظام ہے نا, شعور کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے اور اتنا ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ جاگتے میں خواب دیکھیں, یا جب آپ خواب دیکھ رہے ہو تو آپ وہاں جاگ رہے ہو, یعنی آپ کو پورا شعور ہو. میں نے کیا کہا تھا, تین لفظ استعمال کیے تھے کہ جب آپ ارادی, اختیاری اور شعوری طور پہ خواب دیکھنا سیکھتے ہیں تو گویا آپ لیل کے حواس کا استعمال کرنا سیکھ رہے ہیں. یاد کریں, یہی بات عرض کی تھی نا, تین چیزیں, تین کمپوننٹس ہیں, کیا ارادہ, اختیار اور شعور. اگر آپ خواب میں باشعور ہیں, اگر آپ خواب ارادے سے دیکھ رہے ہیں, اپنی مرضی کا خواب دیکھ رہے ہیں, تو یہ آپ کا اختیار ہوا. اگر آپ جاگتے میں یہ رات کے حواس طاری کر لیں تو یہ سخر لکم اللیل والنہار, اللہ نے آپ کے لیے مسخر کیا ہوا دونوں حواسوں کو. آپ چاہے تو دن کے حواس کو طاری کیے رکھیں, چاہے تو اپنا رات کے حواس طاری کر لیں, چاہے تو سورج یعنی کہ روح اعظم کے درجے پہ پہنچ جائیں, چاہے تو قمر یعنی کہ روح انسانی کے درجے یا اس سے نیچے, پھر نجم یا کوکب جو ہے یہ روح حیوانی کے درجے پہ کھیلیں, یہ سب آپ کی چوائس پہ چھوڑا ہے. جو کچھ ہم اپنی چوائس سے کرتے ہیں اس کا ریکارڈ جو ہے پھر وہ کتاب المبین, کتاب المرقوم بن جاتا ہے. اور کتاب المرقوم کا نتیجہ یا پچھتاوا ہے تو یا خوشی ہے, یا آپ خوش ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیسا خوبصورت کھیلا. دیکھیں نا, ایک بندہ کرکٹ کھیلنے میدان میں اترتا ہے, کیا ہوتا ہے, یا وہ برا کھیلتا ہے یا اچھا کھیلتا ہے, برا کھیلتا ہے تو پچھتاتا ہے, اچھا کھیلتا ہے تو خوش ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں دنیا میں بھیجا, ہم نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اچھی طرح استعمال کیا یا استعمال نہیں کیا اور پچھتایا, یا بری طرح استعمال کیا اور پچھتایا. واضح ہو گئی بات, یہ سارا کھیل کھلواڑ آپ کی انا کا ہے. انا کا کام ہے, انا چاہتی ہے کہ وہ خود سے آشنا ہو. من عرف نفسہ, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس جس چیز کو کہا اسی کو ذات کہا ہے, اسی کو انا کہا ہے. قرآن نے اسی چیز کو حبل الورید کہا ہے. دیکھیں کتنا وضاحت ہو گئی ساری چیزوں کی, سب ایک جگہ کوزے میں بند ہو گئی.
اسٹے
بلیسڈ. جی, اینی ون ایلس؟ جی, وعلیکم السلام
سر. یہ میرے
دو کوشچنز ہیں. پہلا تو قبلہ درست کرنے سے کیا مراد ہے؟
پہلے اسی کا جواب سن لیجیے.
جی
اپنی سوچوں کی ڈائریکشن. آپ کی سوچوں کی ڈائریکشن کا نام ہے قبلہ. مادی زون میں یا شریعت میں ہم نے خانہ کعبہ کو اپنی سوچوں کا مرکز اور محور بنایا, اس لیے وہ قبلہ ہے. خانہ کعبہ سے پیشتر مسجد اقصیٰ آپ کا قبلہ تھا, یعنی آپ کی سوچوں کا مرکز اور محور, یعنی ڈائریکٹڈ کدھر ہے. کہتے ہیں نا اپنا قبلہ درست کرو, تو قبلہ درست کرنے سے مراد ہے اپنی سوچوں کا ڈائریکشن یا ان کا ٹارگیٹ جو ہے اس کو درست کر لو. جی اگلا سوال فرمائیے.
بالکل صحیح. سر دوسرا کوشچن جو تھا وہ میرا ابا کی ایک تحریر میں میں نے پڑھا تھا کہ ابا نے فرمایا کہ جب میں نے غور و فکر کیا تو میں نے اللہ رب کریم سے دعا کی کہ مجھے خود مختاری سے نجات دے دیں. اس سے کیا مراد ہوئی؟ اور میرے مراد میں بھی سر 266 پیج پہ تھا کہ جو دوسروں سے اپنی بات منواتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور جو دوسروں کی بات مانتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. انڈیپینڈنٹ آدمی جب چاہے کسی کو چھوڑ سکتا ہے.
جی
سر یہ دونوں
باتیں بظاہر ٹکرا رہی ہیں. جی جی میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے اللہ کے سامنے ہمیں ڈیپینڈنٹ رہنا ہے,
بالکل,
اور لوگوں کے سامنے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. دونوں مسئلے حل ہو گئے.
بالکل ہو گئے.
اللہ کے سامنے ہمیں ڈیپینڈنٹ رہنا ہے, اللہ پہ ڈیپینڈنٹ رہنا ہے. انڈیپینڈنٹ آدمی کیا کہا, یعنی جن جو لوگوں پہ سے کام لے رہا ہے یا لوگوں پہ کمانڈ کرتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ہمیں لوگوں کے سامنے ان کی ڈیپینڈنسی نہیں رکھنی, ان کے سامنے ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنا. یہ دونوں باتیں واضح ہیں. جب بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جی میں تو صرف آپ پہ ڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اپنا آپ کے سامنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا, مجھے محفوظ رکھ اس سے. اور جب مخلوق سے بات ہو ہیں تو چال لو اے تو کیا, یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے آپ. مائی پلیزر. جی ابا کی اپروول کے بعد تو یہ پلیئر ہی پلیئر ہے.
جی سر ماشاء اللہ.
جی دیکھیں نا یہ ساری فیڈنگ بھی تو ادھر سے ہی ہے نا, آپ کے ذہن میں سوال آنا اور پھر میرے ذہن میں جواب آنا, یہ سب انہی کی فیڈنگ چل رہی ہے. انہوں نے ہماری ایسی ذہن سازی فرما دی جس کی وجہ سے ہمارے ذہن کھل رہے ہیں, ہم غیر مرئی سے آشنا ہو رہے ہیں. دیکھیں ہم مرئی سے تو بہت آشنا ہیں, میں آپ کو یہ اضافی طور پہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسی گفتگو میں جو حضور مرشد کریم نے عاصم سے فرمائی اس میں انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو پیاس لگتی ہے, پیاس نظر آتی ہے؟ پھر کہا کہ بھوک لگتی ہے, کیا بھوک نظر آتی ہے؟ حالاں پیاس میں باقاعدہ منہ خشک ہو جاتا ہے, بھوک میں باقاعدہ پیٹ میں چوہے دوڑتے فیل ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ غصے میں آتے ہیں تو کیا غصہ دکھتا ہے؟ نہیں, لیکن غصے کے زیر اثر آپ کے گلے میں کچھ ہونے لگتا ہے, آپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے. غور کریں تو یہ جو جملے ہیں یہ اصل میں اس طرف انہوں نے ہمیں مدعو کیا ہے یا میرے مجھ تک یہ بات پہنچائی کہ بھئی تم مادی چیزوں کو دیکھنے میں جتنا انہماک رکھتے ہو غیر مرئی چیزوں کو بھی تو دیکھنا سیکھو. اب دیکھیں نا آپ ہوا, کمرے میں پنکھا چل رہا ہے تو آپ کو ہوا نظر فیل ہو رہی ہے, اب میں جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں حضور مرشد کریم کے ان ارشادات کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ حس جو ہے وہ ہر حال میں نگاہ ہے. پیاس محسوس کرنا اصل میں پیاس کو دیکھنا ہی ہے, بھوک محسوس کرنا بھوک کو دیکھنا ہی تو ہوا.
بالکل ہوا تھا.
غصے کو محسوس کرنا غصہ دیکھنا ہی تو ہوا. آپ غور کریں کہ ہم عام زندگی میں کتنے سیانے ہیں. میرے شوہر کا موڈ آج ٹھیک نہیں ہے. موڈ دکھتا ہے؟ موڈ تو دکھتا ہے, بالکل دکھتا ہے, حالاں وہ غیر مرئی چیز ہے. اور ادھر کہو کہ بھئی غیر مرئی کو دیکھو تو کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. میرا بچہ اداس ہے. اب اداسی غیر مرئی ہے مرئی چیز ہے؟ یہ تو ماں کو فوراً دکھتا ہے. میرا بچہ بڑا خوش ہے, تو خوشی مرئی ہے کہ غیر مرئی چیز ہے؟
غیر مرئی.
اب یہ اگر ہمارا دھیان مرئی چیزوں کی طرف تو تھا اور ہے, اگر ہم ذرا اسے ترقی کر کے غیر مرئی کو بھی نوٹس کرنا شروع کر دیں تو کس کا بھلا کریں گے بھائی؟ ظاہر ہے ہماری سکت, ہماری سوچ بچار, ہمارا غور و فکر, اس میں اضافہ ہی ہوگا نا.
جی سر, بے شک.
ہماری رینج آف تھنکنگ بڑھے گی کم ہوگی؟
بڑھے گی سر.
تو یہ میری طرف سے چوں گا.
یہ جو ابھی تمام اپر کی آپ نے ابھی بتائی سر, تو اس میں ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اب جیسے فرشتے اور جنات بھی تو ہمارے لیے غیر مرے ہی ہیں.
شاباش.
جیسے یہ, اور اس میں مزید ایک اضافہ کروں گی جو کہ شازیہ کے ذہن میں آیا تھا, میں نے کہا کوشچن ہو رہا ہے تو وہ شازیہ بھی اگر چاہیں تو کہہ دیں کہ یہ تقاضوں کی بات تھی. شازیہ کے ذہن میں یہ سوال آیا تھا تو میں نے اس کے ساتھ ملا کے آپ سے.
تقاضے جو ہیں یہ بھی غیر مرے ہیں. تقاضے سارے کے سارے غیر مرے ہیں. غور کریں.
جی سر بالکل.
اب انسان میں اللہ کی 11,500 صفات ہیں, تو گویا بالفاظ دیگر ہمارے اندر 11,500 تقاضے کام کر رہے ہیں.
جی بالکل ایسے ہی ہے. جی جی.
اب یہ جو تقاضے ہیں یہ اصل میں سطح ہیں, پھر آگے ان کے ٹیئرز ہیں, درجے ہیں. مثلا ایک جسمانی درجہ ہے, ایک ذہنی درجہ ہے, ایک روحانی درجہ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے بڑا وہی ہے. اب ہم نے اسی کو اگنور کیا ہوا ہے. ہم اپنے جسمانی تقاضوں کی تکمیل میں صبح سے شام تک کوشاں ہیں. اگر ہم اپنے ذہنی تقاضوں کو بھی وقت دینا سیکھ لیں یا ان پہ توجہ دیں, تو رفتہ رفتہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم روحانی تقاضوں کو بھی سمجھنے لگیں. سب سے بڑا روحانی تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کا عرفان حاصل کر لوں.
بے شک سر بالکل.
آپ لوگ سب نے ماشاءاللہ جنہوں نے بھی سلسلے میں داخلہ لیا, تو آپ سے جو فارم بھروایا گیا اس پہ کیا لکھا ہے کہ آپ سلسلے میں داخلہ کیوں لینا چاہتے ہیں, تو آپ نے کون سی کلاوز کو ٹک مارک کیا تھا؟ اللہ کے عرفان کو.
جی اللہ کے عرفان. جی سر.
غور کریں, یعنی کہ اللہ کا عرفان یہ سب سے بڑا تقاضا ہے. یہی اللہ چاہتا ہے. اللہ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اسے آشنا ہو. ٹھیک ہو گیا؟
بالکل ٹھیک ہو گیا سر.
چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے میرا خیال ہے.
ٹھیک ہو گیا سر.
یعنی
تھینک یو سو مچ سر.
ارشاد
سر,
ये महसूस करने वाली हुई अब्बा की बात का जब हम आते हैं जब कभी ये कैफियत होती है कि हम अल्लाह को महसूस कर रहे होते हैं उसकी गुरबत को, तो इट मीन के हम उसे वो देख रहे हैं।
तो और क्या, यही तो देखना है। मैंने क्या उसकी हजूर कलंदर बाब औलिया ने किताब लौ कलम में क्या बताया कि सिर्फ निगाह इल्म जो है वो निगाह है बस, बाकी सारे दर्जे उसके तौसी तफसीली और आखिरी दर्जा जो है वो महसूसाती इल्म के हैं। जब आप महसूस कर रहे हैं एक चीज को तो हिस का काम, हिस काम कर रही है और हिस अल्टीमेटली निगाह है। इतना बड़ा मसला हल हो गया, वेखी जा मौला दे रंग। अगर आपको अल्लाह महसूस होने लगा तो गोया देखना ही तो सीख लिया आपने, सीख रहे हैं आप उसको और ज्यादा महसूस करें, इतना ज्यादा करते जाएं कि महसूसाती से ऊपर उठते हुए तौसी और तफसीली से गुजर कर आप निगाह के इल्म, इल्म के दर्जे पे आ जाएं, निगाह जो है वो काम करने लगे। माल है ना इल्ल बलाग।
थैंक यू सो मच सर।